हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 129। अगला दिन बहुत बड़ा होने वाला था, क्योंकि अगले दिन ही इवेंट था और उसकी सारी तैयारियां लगभग हो गई थीं। शिविका मन ही मन यही सोच रही थी कि सब कुछ अच्छी तरह निपट जाए, लेकिन इसके अलावा उसके दिमाग में करण और उसकी कही बातें भी चल रही थीं। उसने इस बारे में सोचते हुए कहा, क्या सच में मुझे जलन हुई थी निधि से? हाँ, शायद बुरा तो लगा था। मुझे वो कुछ ज्यादा ही करण के आसपास भटकती हुई नजर आती है। पहले तो बाकी लड़कियां भी ऐसी ही थीं, लेकिन अब तो ज्यादातर सिर्फ वही ऐसा करती है। शायद वो करण को पसंद करती है। लेकिन वो कैसे करण को पसंद कर सकती है? करण तो मेरा फियांसे है ना? इतना सब सोचते हुए शिविका कब करण के ख्यालों में गुम हो गई और उसके साथ बीते हुए पलों के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। किस तरह उसे स्पेशल फील कराता है और कंफर्टेबल भी, और वो खुद भी उसके साथ कितनी खुश रहती है। उन सब के बारे में सोचकर वहां लेटी हुई शिविका कब मुस्कुराने लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन फिर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ, उसने अपने मन से ये ख्याल झटकते हुए कहा, नहीं, ये क्या, मैं फिर से वही सब सोचने लगी, पागल हो जाऊंगी ऐसे तो मैं। और इतना बोलकर इधर उधर करवट बदलते हुए सोने की कोशिश करने लगी। फिर जब उसने काव्या की तरफ अपना चेहरा किया तो उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचती हुई बोली, क्या काव्या जब बड़ी होगी तब उसके लिए ये सब इतना ही आसान होगा और वो करण को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगी हम दोनों की लाइफ में? और करण, जैसे वो अभी काव्या को इतना प्यार करता है, क्या वो कभी भी चेंज नहीं होगा हमारे अपने बच्चे होने के बाद भी? शिविका के मन में पता नहीं क्यों एकदम से ये ख्याल आया। फिर जैसे ही उसका ध्यान इस बात की तरफ गया, उसने अपने आप को डांटते हुए कहा, बच्चे, सीरियसली क्या सोच रही हूँ मैं ये सब? वैसे भी कल इवेंट है, मुझे अभी उस पर ही फोकस करना चाहिए। और करण के साथ तो अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं हमारे बच्चे सोच रही हूँ। सच में मैं पागल हो जाऊंगी, इस लड़के ने मुझे पागल कर दिया है। इतना बोलते हुए करण का ख्याल शिविका ने अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। और फिर उसे भी कुछ देर बाद नींद आ ही गई, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी। रात में देर से सोने की वजह से अगली सुबह शिविका की आंख जल्दी नहीं खुली। सुबह के 8 बज गए थे। क्योंकि संडे था इसलिए काव्या को भी आज स्कूल नहीं जाना था, तो ज्योति उसे जगाने के लिए भी कमरे में नहीं आई। 8 बजे के अलार्म से शिविका की आंख खुली, क्योंकि वो नॉर्मली 8 का ही अलार्म लगाती है, क्योंकि उसे 10 से पहले ऑफिस पहुंचना होता है। और जब उसने अलार्म बजते हुए सुना तो आंखें बंद किए हुए नींद में ही हाथ से इधर उधर छूकर अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगी। फिर आधी नींद में ही वो स्क्रीन पर टच करती हुई मोबाइल उठाकर अलार्म बंद कर रही थी, लेकिन अलार्म बंद नहीं हुआ। तो फिर उसे आंख खोलकर स्क्रीन की तरफ देखना पड़ा। शिविका ने अपने हाथ से आंख मलते हुए दूसरे हाथ में पकड़े हुए मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, और जैसे ही उसने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे, या यूं कहें कि 8:02 हो गए थे, क्योंकि पिछले 2 मिनट से तो अलार्म ही रिंग हो रहा था। टाइम देखकर शिविका एकदम हड़बड़ाती हुई वहां पर उठकर बैठ गई और बोली, शिट, 8 बज गए, मुझे तो बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर तक कैसे सोती रह गई मैं, अब क्या करूं? इतना बोलते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, और उसकी आवाज सुनकर उसके साथ लेटी हुई काव्या भी उठकर बैठ गई और मुंह बनाती हुई बोली, क्या हुआ मम्मा, आप चिल्ला क्यों रही हो? वैसे भी आज तो संडे है ना, आपको क्या हो गया, कहाँ जाना है आपको, मेरे तो स्कूल की भी हॉलिडे है। काव्या ने उसकी बात सुनकर बहुत ही प्यार और मासूमियत से पूछा, तो शिविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बेबी, संडे तो है, लेकिन मुझे आज जाना है और मुझे आज जल्दी पहुंचना था, क्योंकि ऑफिस नहीं, मुझे इवेंट के लिए जाना है, वहां पर काम है, बस तुम इतना समझ लो, बाकी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा बेबी। इतना बोलते हुए उसने हल्का सा झुककर काव्या को प्यार करते हुए उसके गाल पर किस किया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। काव्या अभी भी नींद में थी और उसने कहा, ओके बट मम्मा, मुझे अभी भी नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? उसके सिर पर हाथ फेरते हुए शिविका ने कहा, ओके बेबी, सो जाओ, तुम जब सोकर उठना तब ज्योति दीदी तुम्हें ब्रेकफास्ट करा देंगी। शिविका की बात सुनकर मुस्कुराकर काव्या ने ओके बोला और वो दोबारा से बेड पर लेट गई, क्योंकि उसे सच में नींद आ रही थी। लेकिन शिविका अब और सोना तो क्या, जरा देर और भी वहां बैठने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी, इसलिए वो हड़बड़ाती हुई उठी और वहां से सीधा अपने रूम की तरफ भाग गई, क्योंकि वो रेडी होने के लिए अपने रूम में ही जाती है, उसका सारा सामान उसके रूम में ही है। वो यहाँ पर बस काव्या के साथ सोती है, क्योंकि जब से काव्या हुई है उसे अकेले सोने की आदत छूट गई है। शिविका अपना फोन वहीं काव्या के पास ही छोड़ गई थी, क्योंकि वो रेडी होने की जल्दबाजी में थी, और वहां पर उसका फोन ना जाने कितनी बार रिंग हुआ, जिसकी वजह से काव्या भी नहीं सो पाई। उसने गुस्से में मोबाइल फोन उठाया, लेकिन उसे कॉल रिसीव करना नहीं आता, उसने स्क्रीन पर टच किया तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और फिर काव्या ने गुस्से में साइड का बटन दबाकर मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया और दोबारा सो गई। दूसरी तरफ सारे लोग वहां इवेंट वाली जगह पर पहुंच गए थे और करण भी। इस वजह से वो ज्यादा देर नहीं सो पाया था क्योंकि उसे आज होने वाले इवेंट और काम की बहुत ज्यादा टेंशन थी, इसलिए वो 8 से पहले ही वहां पर आ गया था और उसे लगा था कि शिविका भी आ जाएगी टाइम से, लेकिन वो अब तक वहां पर नहीं आई थी। लेकिन एक एक करके बाकी सारे लोग स्टाफ के वहां पर आ गए थे और शिविका को वहां पर ना देखकर सभी अपने काम में बहुत आनाकानी कर रहे थे और एकदम ढीले ढाले तरीके से काम कर रहे थे। करण ने एक दो बार इन सबको टोका भी, लेकिन करण की बात को कोई भी इतना सीरियसली नहीं लेता था क्योंकि वो सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट है, उन सबका बॉस नहीं। इसलिए जतिन और करण ने आपस में डिस्कस करके शिविका को कॉल करने के बारे में सोचा। एक दो बार करण ने कॉल किया लेकिन शिविका ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया, तो करण ने जतिन से कॉल करने के लिए कहा, लेकिन अब तो शिविका का फोन ही स्विच ऑफ बता रहा था। ये सुनकर जतिन बोला, तुम्हारा तो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी लेकिन मेरा तो लग ही नहीं रहा, नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, पता नहीं कहां रह गई, आई होप सब ठीक हो, जतिन ने करण की तरफ देखते हुए कहा। तो करण एकदम से बोला, हाँ सब ठीक ही है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो बस रात को लेट हो गया था ऑफिस से जाने में मैडम को, तो हो सकता है सुबह आंख ना खुली हो और कुछ भी नहीं हुआ होगा। जतिन ने ये बात इस तरह से बोली तो करण को अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहता था कि शिविका के बारे में ऐसा कोई भी कुछ बोले, जबकि जतिन ने तो बस ऐसे ही नॉर्मली वे में ये बात बोली थी और करण ने तुरंत ही ये बात कही। तो जतिन बोला, अच्छा तुमसे भी ज्यादा लेट तक रुकी थी क्या मैडम कल वहां पर, और कितने बजे गए थे तुम घर? जतिन के इस सवाल पर करण को पिछली रात की बात याद आ गई कि वो और शिविका एक साथ ही ऑफिस से निकले थे, लेकिन ये बात वो जतिन या फिर किसी को नहीं बता सकता, तो उसने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ हाँ शायद मेरे बाद ही निकली होंगी, मुझे नहीं पता, मैं ही काफी देर से घर गया था, तब तक तो मैम ऑफिस में ही थी।
करण की बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए जतिन बोला, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो बात है, वो हमारी बॉस है और वो लेट भी आ सकती है, लेकिन हम सबको तो अपना काम करना ही होगा ना। जाओ उस तरफ, वो जो स्टूडियो वाला डिपार्टमेंट है जहाँ से मॉडल रैंप वॉक के लिए आएंगी और वो जो ज्वेलरी डिज़ाइन पहनेंगी उस तरफ तुम देखो, और बाकी ये जितना भी काम बचा है, सीटिंग अरेंजमेंट और लाइटिंग, ये सब कुछ मैं देख लेता हूँ। आपस में डिस्कशन करने के बाद अपने अपने डिपार्टमेंट डिवाइड करके जतिन और करण दोनों अलग अलग साइट पर चले गए। जतिन का ज़्यादातर काम हॉल में था और वो फ़िलहाल एंट्रेंस गेट पर खड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर भी डेकोरेशन होनी है जो कि अब तक शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश फ्लावर से डेकोरेशन की जानी थी तो वो इवेंट से बस कुछ घंटे पहले ही की जाएगी और उसी की तैयारियाँ हो रही हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जतिन वहाँ पर खड़ा होकर वो सब देख रहा है। उसे साहिल मेहरा, जिसकी कंपनी के लिए ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो वहाँ पर आता हुआ नज़र आता है और उसे वहाँ देखकर जतिन एकदम ही हड़बड़ा जाता है और जल्दी से दरवाजे के पास आ जाता है। उसे देखकर उसके सामने आते हुए जतिन बोला, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी जल्दी? अभी तो काफ़ी टाइम है, इवेंट स्टार्ट होने में अभी तो सुबह के 9 भी नहीं बजे हैं। एक तरह से जतिन उसके रास्ते में आकर खड़ा होते हुए ये सब बोला तो साहिल ने जतिन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कभी भी आ सकता हूँ? वैसे भी ये मेरा इवेंट है तो क्या मैं काम देखने भी नहीं आ सकता, या फिर इसके लिए कोई रूल है 9 बजे के बाद आने वाला? साहिल ने काफ़ी रूड होकर ये बात बोली और उसके साइड से निकलकर थोड़ा सा आगे आ गया। साहिल के साथ ही उसकी असिस्टेंट सोनिया भी है, लेकिन इसके अलावा आज एक और आदमी भी आज वहाँ पर उन दोनों के साथ है जो कि देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा अच्छी पर्सनालिटी वाला है। इसके साथ ही उसने एक स्पेशल तरह की ड्रेस पहनी हुई है जिससे कि वो साहिल का बॉडीगार्ड लग रहा है, लेकिन आज जतिन ने पहली बार ही उस बॉडीगार्ड को उनके साथ देखा है। साहिल इस तरह से वहाँ पर आया तो जतिन इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया है क्योंकि उसे लगा अब वो बाकी सारी चीज़ों में भी कुछ ना कुछ कमी निकालेगा और जो उसे पसंद नहीं है उसे बदलने को कहेगा, इस वजह से उनका काम बढ़ जाएगा। इसलिए ये सोचते हुए वो तुरंत ही उसके पीछे आया और फिर से उसके सामने खड़े होकर बोला, आई एम सॉरी सर, बट मैं मैनेजर हूँ SK ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कंपनी का और फिलहाल ये सारा अरेंजमेंट देख रहा हूँ, और आप कभी भी आ सकते हैं, आपने सही कहा, लेकिन बस मुझे अभी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि अभी तो हमारी बॉस खुद भी यहाँ पर नहीं आई हैं। क्रमशः